अगली सूरत दुखान है, और दुखान कहते हैं धुएं को। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बेह करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरत दुहान की इब्तदाई 6 आयात नजूले कुरान के बारे में, और लैलतुल मुबारका के लफ्ज़ से यहाँ मुराद लैलतुल कद्र है। बहुत सारे लोग जो ही शबे कदर या लैलतुल कदर की बात करते हैं तो वो सूरत कदर पे पहुंच जाते हैं कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र। हालांकि सूरत दुखान की नायात में कुरान के नजूल की बात, और हम सब जानते हैं कि कुरान का नजूल रमज़ान में हुआ था, शाबान में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले 21वीं रात जब थी तो हमने इन्हीं आयतों को बेस बनाकर आखिरी 10 दिन को कैसे गुजारे। देखिए, छोटी सी कोशिश होती है और बरकत कैसे मिलती है, मैं तो खुद भी नहीं सोच सकती। आप तक भी मैसेज गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और आए भी बहुत सारे लोग अल्लाह के हुक्म से जिनके लिए आना उस वक्त आसान था। उस लेक्चर को अल्लाह ने इतनी बरकत दी, मैं खुद हैरान हूँ। उसी वक्त रिकॉर्ड हुआ, हम जो यहाँ से सुन रहे थे, और मैंने ऐसे ही जो 2 मीडियम मेरे सामने थे, क्योंकि रात का वक्त है कौन सुनेगा, 200+ लोग उस वक्त मेरी नज़र में आए किसी जगह से सुन रहे थे। उसके बाद हम कर करा के सहरी के बाद फारिग हुए। सुबह उठ के जब मैंने अपने मैसेजेस चेक किए, किसी ने उसको शेयर किया हुआ था, उन्होंने खुद अपने ओन पे रिकॉर्ड किया होगा, क्या होगा उन्होंने हमारे किसी ग्रुप में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है, चले जो हो रहा है देखते हैं। 24 घंटे के अंदर, बल्कि शायद उससे भी कम पे, जो हमारी एडिटिंग टीम है उधर से वो लेक्चर एडिट किया हुआ 2 पार्ट्स में मैसेज के साथ पहुंच गया, क्योंकि सबको ये था कि ये इन दिनों के मुतल्लिक है। उसके बाद अगले दिन कल ही की, तो बात ये सिर्फ सबको 24 घंटे और ये 36 आवर्स के अंदर हुआ है। फिर मैंने देखा तो एक सिस्टर ने वो मैसेज बना करके इसको कैसे सुने, और मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि तरतीलुल कुरान को अगर आप इन 10 रातों में 3-3 पारे करके सुन ले तो वो उसकी सारी बातें लोगों ने एडिट करके मैसेज बनाए हुए। फिर आज सुबह उठी तो देखा तो हमारी इंडिया से एक सिस्टर है, तो उन्होंने अपने एक फ्लायर बना हुआ उसी लेक्चर के नाम पर, और वो कह रही है आज की रात हम इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ बैठ ये लेक्चर सुनेंगे। जिधर हुआ, जिन्होंने किया, जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने सोचा भी नहीं कि इसको इतनी खैर मिलेगी। आपको भी यही कहूंगी, अगर आप उसे नहीं सुन सके तो आज की शीट के साथ आपको भेजते हैं, मुख्तसिर से। मेरा हाल है दोनों फाइल्स मिलाएं तो 45 मिनट, मैंने लंबा किया भी नहीं, उसमें सारी बातें हुई थी, लैलतुल कदर क्या है और प्लस दिस एंड दैट। तो बहुत दफा छोटी सी नेकी होती है, अल्लाह ने जिसको फूल फल देने होते हैं वो लग जाते हैं। लेकिन यहां इस रात के नाते से अब आपको आज कहूंगी कि आज फिर ताक रात है, जाया ना कीजिए, ये आखिरी 10 रातें बहुत कीमती हैं, इसको बेहतरीन तरीके से ले। आज से इंशाल्लाह ये जो चंद रातें आ रही हैं तो एक सीरीज शुरू करेंगे हम लोग, छोटे अमाल बड़े अजर, यानी ये बेसिकली एक मुस्तकिल टॉपिक चलेगा इन 4 रातों में, कि जिसमें हम ये देखेंगे कि बाज दफा हम पढ़ते हैं सारी रात का सवाब, सारी रात का क़याम, हज, उमरा, जिहाद, अब ये नेकी हमसे नहीं होती, नहीं कर पाते, अब क्या करें। तो इंशाल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में क्या आमाल हैं कि जिनको करें तो हमें पूरी रात के क्याम का सवाब है, और इस क्योंकि रमज़ान में जो हमारी कैफियत बनी हुई है ये बाद में नहीं रहेगी, और अल्लाह ताला हमें इन रातों की कदर करने वाला बना दे। फरमाए आसमान ज़मीन का रब और हर उस चीज़ का रब जो ज़मीन व आसमान में है, और अगर तुम लोग वाकई यकीन रखते हो कोई माबूद इसके सिवा नहीं, वही जिंदगी अता करता है वही मौत देता है, तुम्हारा रब और तुम्हारे इन असलाफ का रब जो पहले गुजर चुके, मगर फिल वाकई इन लोगों को यकीन नहीं है बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरीख धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सजा। अब कहते हैं परवरदिगार हम पर से ये अजाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं, इनकी गफलत कहाँ दूर होती है। इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबीन आ गया फिर भी ये इसकी तरफ इल्तफात ही नहीं करते, इस पे गौर कीजिए, वक्त का रसूल आ गया और ये उसकी तरफ रुख नहीं करते। अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत करके मदीना जाते ही वहां कहत डाल दिया और इनकी आंखें अंदर चली गई, इनको आसमान धुआं लगता था। ये सारा वो वाकया चल रहा है। कहते क्या थे और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया बावला है, यानी ये कोई बातें करता है ऐसी सीखी सीखी सुनी सुनाई बातें हमारे साथ शेयर करता है। हम जरा अजाब हटाए देते हैं, फिर तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज हम बड़ी जर्ब लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। दुआ कीजिए कोई ऐसी हरकत सरजत ना हो जाए कि अल्लाह हमसे इंतकाम लेने पे आ जाए। हम इनसे पहले फिरौन की कौम को इसी आजमाइश में डाल चुके हैं। इनके पास एक शरीफ रसूल आया और इसने कहा, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो, मैं तुम्हारे सामने अपनी मामूरियत की सरीख सनद पेश करता हूँ और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले चुका हूँ इससे कि तुम मुझ पर हमला आवर हो जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से बाज रहो, यानी मुझे धमकियां ना दो, क्योंकि मेरा मुहाफिज मेरा रब है। आखिरकार इसने अपने रब को पुकारा कि ये लोग मुजरिम है। देखिए कैसे नबियों ने सिखा दिया कि जब तुम्हारी बस ना चले तो अपने आप को अल्लाह के हाथ में दे दो। और अल्लाह ने फिर इसी पे नबियों की मदद भी की। फर्स्ट इबी वादी लैलन, अच्छा तो रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़, तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। समंदर को इसके हाल पर खुला छोड़ दे, ये सारा लश्कर गर्क होने वाला है। कितने ही बाग और चश्मे और खेत और शानदार महल थे जो वो छोड़ गए। बड़ी उदास करने वाली आयतें, जिनको अपने घरों और अपने महल्लात पे इतना मान था, अल्लाह कहते किधर गए, समंदर की मौजों में गर्क हो गए। पीछे क्या रह गया, घर भी रह गए महल भी रह गए। देखिए पिछली कौमों पे अजाब आया, साथ ही सब तबाह हो गया। मिस्री कौम के ऊपर अजाब आया, उनके घर कल्चर सारे मौजूद रहे, इसीलिए आज तक इजिप्ट की तारीख मौजूद है। कितने ही ऐश के सरो सामान जिनमें वो मजे कर रहे थे इनके पीछे धरे रह गए, ये हुआ इनका इंजाम। और हमने दूसरों को इन चीजों का वारिस बना दिया। थोड़ा सा अपने इंजाम पे भी गौर कर लें, हमारी सब चीजें पीछे रह जाएंगी। हमारे कपड़े कोई भी नहीं पहनेगा, हमारी जूतियों को लोग एक बैग में डालकर किसी मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में फेंक आएंगे। अपनी बच्चियां बच्चे आपकी चीजें इस्तेमाल कर लें, बड़ी बात है, कोई भी नहीं करेगा। ये अम्मा की चीजें फेंको इनको, ये पुरानी है, ये इस्तेमाल शुदा है, ये वो है। और उन घरों में कोई दूसरे आ जाएंगे जहां हम रहते थे। तो दुनिया आखरत की खेती है, आज की जमीन पे आखरत के बीज लगाइए। वहां जाकर खुश हो जाएंगे अपनी चीजें देखकर कि शुक्र है मैं आई हूं, मेरी चीजें तो आ गई, मैं अपने साथ तो ला नहीं सकी। फिर ना आसमान इन पर रोया ना जमीन, और जरा सी मोहलत भी इनको ना दी गई। क्या पता चला कि इन चीजों के अंदर भी हिस है। आसमान पे नेक शख्स के अमाल जाते हैं और उसका रिस्क उतरता है। जब वो मर जाता है तो आसमान को महसूस होता है कि एक नेक बंदा दुनिया से चला गया। हम अपने लिए सोचे, जब हम मरेंगे तो क्या जमीनों आसमान हमारे लिए रोएंगे, या क्या कहेंगे, जान छुटी सो लाखों पाया, एक बदबख्त था नाफरमान था दुनिया से चला गया। इस तरह बनी इसराइल को हमने सख्त जिल्लत के अजाब फिरौन से निजात दी, जो हद से गुजर जाने वालों में फिल वाके बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था। और उनकी हालत जानते हुए इनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह दी और इन्हें ऐसी निशानियां दिखाई जिनमें सरीह आजमाइश थी। अल्लाह अकबर, आप देखिए कितना मान किया था उन्होंने अपने घरों और अपनी चीजों पर। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह सुबहान तआला जिंदगी में जब हिदायत का कोई मौका लाए फौरन पकड़ लीजिए। अगर छोटी छोटी चीजों का नाम लेकर मजबूरियों के फंदे में फंसकर और पाबंदियों में फंसकर अगर आप वो नेकी छोड़ देंगे ना, तो शायद फिर दोबारा उसका कभी मौका ना आए। और अल्लाह का एक असूल याद रखें, बस दफा मजबूरियों और पाबंदियों में हमारी मुनाफ़कत छुप जाती है, क्योंकि जब पाबंदी कोई नहीं होनी, जब मजबूरी कोई नहीं होनी, करना हमने वो काम तब भी नहीं होता, तो फिर बंदा रोता है कि चलो मजबूर थी, कम से कम दुनिया वालों की नजर में कुछ तो मेरी कदर थी। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिल का निफाक खत्म कर दे और नेकियों के मौके नजर आए और उसको अपनाना ना, इससे बड़ा निफाक क्या है। और गुनाहों की चीजों को लपक लपक कर लेना या उससे हटना ना, इससे बड़ा निफाक क्या है। अल्लाह ताला हमें जिंदगी में ही अपने लिए बेहतरीन फैसले करने वाला बना दे। और याद रखिए कि बास लोग आसानियां मिलते ही सुस्त हो जाते हैं, अल्लाह हमें ऐसी कोई आसानी जिंदगी में ना दे जो हमें सुस्त कर दे। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, इसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये बेहतर है या तुब्बा की कौम और इससे पहले के लोग। हमने इनको ऐसे इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। ये जमीन और आसमान और इनके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी, इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यानी अपना पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढो। इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने नाचने कूदने नहीं आए, तुम्हें एक बड़ी संजीदा काम की तैयारी के लिए भेजा है, और वो काम क्या है? जन्नत में दाखला। अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले का दिन है, वो दिन जब कोई अजीज से करीब अपने किसी अजीज करीब के भी कुछ काम ना आएगा। सोचे, कोई ऐसा अजीज तो नहीं मेरा जो मुझे मकसद से रोक रहा है, और सिर्फ इबादत पे उसने मुझे रोक लिया। फरमाया, और ना कहीं से कोई मदद पहुंचेगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे, वो जबरदस्त और रहीम है। अब अगली आयतों को बड़े हौसले के साथ सुनिएगा। फरमाया, इन शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कल मुख यखलीफिल बुतून। ज़क्कूम का दरख्त गुनागार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा, वो जो सारा कुछ फ्राई करके कई दिन के बाद घी के नीचे ऑयल के नीचे लेस तर मादा होता है ना, वो पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश पकाता है। और ऊपर से आवाजें, क्या पकड़ो इसे और अगेधते हुए ले जाओ इसको जहन्नुम के बीचों बीच, और उंडेल दो इसके सर पर खौलते पानी का अजाब। और साथ क्या कहा जाएगा, चख चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू, यानी बड़ी इज्जत वाला बनता था, आज देख तेरी जो बेइज्जती हो रही है। ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा कर रखे। आप देखिए कि ये वो चीज है जो बंदे को दुनिया में समझ आ जाए ना, तो फिर कभी इस दुनिया के अंदर अल्लाह को तो ना नाराज करे चले, कमी बेशी तो रहेगी। वहां से सारी इज्जत, ये बिग हेड था तेरा जो कभी झुका नहीं था, तेरी प्रेस्टीज तुझे झुकने नहीं देती थी, हर गुना तेरा इज्जत का मसला बना होता था, तकब्बुर की सजा। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिल से बड़ाई का एहसास निकाल दे। इसके बरक्स खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे, ये होगी इनकी शान। देखिए अल्लाह ने जन्नत के नक्शे में किस चीज का तذکرہ किया है, जो इंसान का मन चाहता है, तो ये गुनाह तो नहीं है, हराम तो नहीं है। सिर्फ ये देखो कि रेशम और हरीर के कपड़े पहनकर करते क्या हो, फरमा बरदारियां के नाफरमानियां। और हमारा हाल है कि हमारे हर जोड़े के अंदर कई दास्तानें रकम हुई होंगी नाफरमानियों की। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, पता नहीं ये जोड़े ही कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ ना बोल पड़े, कितने का बना और कितने का इस पे वक्त लगा और पहन के इसको शिरकत कहाँ की। अल्लाह हमारे किबले दुरुस्त कर दे। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें इनसे ब्याह देंगे, वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे, वहां मौत का मजा वो कभी ना चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से इनको जहन्नुम के अजाब से बचा देगा। और असल अगर तमन्ना करनी है तो ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अब देखिए कि जन्नतियों की बात हुई तो अल्लाह ताला ने अच्छे कपड़ों के साथ बीवियों का तस्करा कर दिया। ये कौन सी औरतें हैं जो दुनिया में अपनी निगाहों को झुकाती थी, बाहया औरतें थी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मौत को भी मौत आ गई। सब जन्नती जहन्नमी जब अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला मौत को एक चित कब्रे काले सफेद दुम्बे की सूरत में ज़िबा कर देंगे, और एक आवाज लगेगी कि आज के बाद मौत नहीं। आपने फरमाया अगर खुशी से कोई मर सकता तो इस पुकार को सुनकर जन्नती लोग मर जाते, और अगर गम से कोई मरता तो इस पुकार को सुनकर जहन्नमी मर जाते। आज ही कोई आपको मुझे कह दे तुमने मरना नहीं है, जान में जान नहीं आ जाएगी, सांस में सांस आ जाएगा कि अल्लाह तू हमारे लिए इस चीज को आसान कर दे। अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने जब आपके मेरे लिए इतनी प्यारी चीजें तैयार की हैं तो फिर करें क्या। आखिरी आयत में इस सूरत की देखिए, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ए नबी हमने इस किताब को आपकी जुबान में सहल बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी इंतजार करो, ये भी मंतजर है। यानी जब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कुरान सुनते होंगे कैसा लगता होगा। और मुझे ये आयत पढ़कर ऐसा लगा कि अल्लाह ताला इस वक्त हम सबको कह रहा है, कितने आराम से हम तर्जमा सुनते जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ना। और अगर आप एक एक्टिविटी करना चाहें, मुझे अभी पिछले दिनों में भी दो तीन तरफ से इस तरह का फीडबैक आया, कहती है कुरान घर में मौजूद है तर्जमे वाले, थोड़ा सा पढ़ते हैं नींद आने लगती है, समझ ही नहीं आता, फोकस नहीं होता। आप जब पढ़ रही होती हैं तो हमें ऐसे लगता है आप बातें कर रही हैं। मैंने कहा एक तो ये तर्जमा भी बहुत आसान है, आपने देखा होगा मैं कई जगह लफ्ज़ बदलती हूँ सहूलत की खातिर, कुछ मुश्किल लफ्ज़ आसान करती हूँ, कुछ झोल हैं इसमें चंद उसको चेंज करती हूँ। तो आप मैं इस पे शुक्र करें कि अल्लाह ने आज हमें इतनी आसानी से ये तर्जमा समझा दिया। देखिए जिस तरह आज ये तर्जमा समझ आ रहा है ना, एक दिन आएगा इस तरह आपको अरबी भी समझ आ जाएगी। तो दुआ करें कि अल्लाह अरबी सिखा दे, आज रोए बैठ के अल्लाह अरबी सिखा, अल्लाह अरबी सिखा, अल्लाह अरबी सिखा। चलिए तिलावत सुनते हैं इस आयत के अंत की।
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
अब देखिए ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारी हौसला अफजाई की है कि देखो शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन फाइन नमा यस्सर ना हो, हम इसको आसान कर देंगे। कोई भी काम आप देखें तो शुरू में मुश्किल लगता है फिर बाद में आसान हो जाता है, अल्लाह ताला हमारे लिए भी इसको आसान कर दे। अगली सूरत है जासिया। जासिया कहते हैं घुटनों पे गिरी हुई औरत कह लें, कोई भी चीज़ फीमेल है। यहाँ कौमों का इशारा है कि जो दुनिया में नहीं झुकी कल अल्लाह के आगे झुकी हुई होंगी। आइए पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त और हकीम है। 3 सेकंड गौर करें, मैं इस वक्त किस किताब को पढ़ रही हूँ, मैं इस वक्त किसके कलाम को वक्त दे रही हूँ, अल्लाह के। और अल्लाह कौन है, उसका तज़किरा। हकीकत यह है कि आसमानों ज़मीन में बेशुमार निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और इन हैवानात में जिनको अल्लाह ज़मीन में फैला रहा है, बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं और शब और रोज़ के इख्तलाफ और फ़र्क में और इस रिस्क में जिसे अल्लाह आसमान से नाजिल फरमाता है फिर इसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाता है और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयात के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे। आप और मैं सोचें, अगर इस किताब को पढ़ के हिदायत ना मिली तो अब कब मिलनी है। देखिए ना, मैट्रिक करेंगे आप कहते हैं नहीं एफए में जाके ठीक हो जाऊंगी, नहीं अब बीएससी में ठीक हो जाऊंगी, अब मास्टर कर लूं ठीक हो जाऊंगी, चलें पीएचडी कर लूं। कुरान के ऊपर तो कोई पीएचडी नहीं है, ये आखिरी मौका है मेरे आपके हिदायत पे आने का इल्म की सूरत में। दुआ कीजिए इस किताब को पढ़कर हमें बहसें करनी नहीं, फख्र करना नहीं, बल्कि ईमान लाना आ जाए। फरमाया, तबाही है हर उस झूठे बदअमल शख्स के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं और वो इनको सुनता है, फिर पूरे गुरूर के साथ अपने कुफर पर इस तरह अड़ जाता है गोया कि इसने इनको सुना ही नहीं। ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। वाइज़ा आलिमा मिन आयातिना शैया, हमारी आयात में से कोई बात जब इसके इल्म में आती है तो वो इसका मजाक बना लेता है। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे सब लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है, इनके आगे जहन्नुम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है इसमें से कोई चीज इनके किसी काम ना आएगी। फिर याद कर लें क़यामत के दिन को, ना इनके वो सरपरस्त ही इनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर इन्होंने अपना वली बना रखा है। इनके लिए बड़ा अजाब है। मैं अक्सर सोचती हूँ जो लोग शिर्क करते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं वो ऐसी आयतों की क्या तफसीर करते हैं। बोल बोल के कुरान कह रहा है क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, फिर इसके बाद हमारी इनके आगे और इनकी हमारे आगे, हमारी इनके आगे और इनकी रब के आगे। दुआ कीजिए अल्लाह शिर्क खत्म कर दे हमारी जिंदगियों से। खत्म कैसे होगा इसका जवाब आपको अगली आयत में मिल रहा है और मुझे भी, और वो क्या है, ये कुरान सरासर हिदायत है। इन लोगों के लिए बला कदर नाकसाब है जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मसख्खर किया ताकि इसके हुक्म से कश्तियां इसमें चलें और तुम इसका फजल तलाश करो और शुक्र गुजार बनो। अल्लाह में शुक्र गुजारों में शामिल कर ले। इसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मसख्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे। ऐ नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन का कोई अंदेशा नहीं रखते इनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को इसकी कमाई का बदला दे। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा और जो बुराई करेगा वो आप ही इसका खमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब की तरफ है। चंद सेकंड दें वापसी को, फिर सोचिए क्या बनेगा जब रब की तरफ पलटूंगी। दुनिया में भी किसी को मिलना होना तो कहते हैं क्या जवाब देंगे, क्या शक्ल दिखाएंगे। पाकिस्तान जाना हो तो कई लोगों से गुस्से, गिले, नाराजगियों का सोच के कई लोग कहते हैं हाय अब जाना है, अब सामना होगा, क्या करेंगे। जब अल्लाह को सामना दिखाना है उस दिन क्या होगा ये फिक्र लगा लीजिए, बाकी सारी फिक्रें दब जाएंगी। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी, इनको हमने उम्दा सामान अजीज से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर इनको फजीलत अता की और दीन के मामले में इन्हें वाज़े हिदायत दे दी। हमें मिली है वाज़े अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हुआ, फमख्तलफ़ो, फिर जो इख्तलाफ इनके दरमियान रूनमा हुआ वो नावाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ। देखिए इख्तलाफ की दो वजूहत होती हैं, एक बेइल्मी है ही नहीं था, पता ही नहीं था इतना बड़ा गुनाह, इल्म आएगा फौरन खत्म होगा, डर जाएगा बंदा, वो हो मैं इतने बड़े बड़े गुनाह करती थी मुझे तो पता ही नहीं था, रोएंगे धोएंगे तौबा के साथ अल्लाह से माफिया मांगेंगे दूर हो जाएगा। एक इख्तलाफ आता है इल्म के बाद, वो लोग जो पहले से कोई इल्म रखते हैं वो तो बातें सुनकर आगे से वैसे करेंगे, नहीं जी ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं। तो दुआ कीजिए कि ये इल्म हमारे गुनाहों को खत्म करने का जरिया बन जाए। बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ और इस बिना पर हुआ कि वापस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के रोज इन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। इसके बाद ए नबी, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहरा यानी शरीयत पर कायम किया, बस तुम इसी पर चलो और इन लोगों की ख्वाहिशात की इत्तबा ना करो जो इल्म नहीं रखते। पारे के शुरू में भी यही बातें थी, पूरी सूरत शुरा आपने इसी थीम पर पढ़ी है कि शरीयत के मुकाबले में ख्वाहिश को न मानो, अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। अल्लाह में मुत्तकी बनाकर अपना साथ दे दे। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो यकीन लाएं। बसीरत सबको मिल जाएगी, हिदायत और रहमत सिर्फ यकीन वालों को मिलेगी। बेयकीनी से सीखा हुआ इल्म फायदा नहीं देता। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तकाब किया ये समझे बैठे हैं क्या मैंने और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि इनका जीना और मरना यकसा हो जाएगा। दुनिया में बताइए क्या नेक और बद एक जैसा जीते हैं, नहीं जीते एक जैसा, तो क्या आखिरत में जाते ही सब बराबर हो जाएंगे? डेथ दी लेवलर? नहीं, डेथ लेवलर नहीं है, असल तो फैसले ही उसके बाद होने हैं। बड़े बुरे हुक्म है जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमानों जमीन को हक के साथ पैदा किया, और इसलिए किया कि हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज़ ना किया जाएगा। फिर सोचिए वापसी को, क्या बनेगा क़यामत के दिन? किस चीज़ की उम्मीदवार हूँ जो कर रही हूँ? अल्लाह अच्छा करने वाला बना दे। अब यहाँ फिर तदब्बुर की बात है। फिर क्या तुमने कभी इस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद इसे गुमराही में फेंक दिया? अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। और इसके दिल और कानों पर मुहर लगा दी, और इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब और कौन है जो इसे हिदायत दे? क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? फिर ख्वाहिश को खुदा बना दिया। कितने लोग कहते हैं कि कुछ ख्वाहिशें कम हो रही हैं कुरान पढ़ने के साथ साथ, और ख्वाहिश बुरी नहीं होती। हर वो ख्वाहिश बुरी है जो शरीयत से टकराती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी ख्वाहिशें दुनिया से हटाकर आखरत में लगा दे। जब लोग दुनिया की तरफ अपनी आंखें ठंडी करें तो हमारी आंखें, हमारा शौक, हमारा सुकून अल्लाह इबादत में रख दे। ये लोग कहते हैं जिंदगी बस यही दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है, और गर्दिश याम के सिवा कोई चीज़ नहीं जो हमें हलाक करती हो। आज भी लोग यही कहते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जिंदगी है, मौज करो मस्ती करो। दर हकीकत इनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं, और जब हमारी वाज़े आयात इनको सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं होती कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। ए नबी, इनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क़यामत के रोज़ जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। मगर अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। फिर आ जाइए पारे के थीम पे। इल्म क़यामत का यकीन दिलाता है, बेइल्म लोग क़यामत से भी गाफिल हैं। ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज़ क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन बातिल परस खसारे में पड़ जाएंगे। और आगे सूरत का नाम, इस वक्त तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। जासिया, जो जिंदगी भर ना झुके वहां झुकेंगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा, क्या ये अपना नामे आमाल देखे? इनसे कहा जाएगा, आज तुम लोगों को इन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार किया हुआ आमाल नामा है, और जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। सोचिए जरा अपने नामे आमाल को, झूठ तो नहीं बोलेगा वो, सच बोलेगा। तो फिर आज ही अल्लाह में सही लिखने वाला बना दे। जो कुछ भी तुम करते थे इसे हम लिखवाते जा रहे थे। फ़ामल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे, इन्हें इनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और यही सरीह कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफर किया था इनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयात तुमको सुनाई न जाती थी? मगर तुमने तकब्बुर के और मुजरिम बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है। क्या आपको इससे पहले अंदाज़ा था कि इस बारे में क़यामत का इतना तस्करा? तदब्बुर करें तो आपको अंदर से बहुत कुछ और भी मिलेगा। हम तो बस एक गुमान सा रखते थे, यकीन हमको नहीं। सच बताएं, आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल नहीं है? हम क़यामत के इल्म को, नॉलेज को यकीन समझते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है बस हमारे कानों में, कहीं दूर टकरा रही, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। हंसते मुस्कुराते लोग क़यामत कहते हैं, क्या क़यामत लग रही हो? ये कोई खौफ वाले शख्स का जुमला हो सकता है? अस्तग़फिरुल्लाह। तो वाकई आज गुमान रह गया पीछे। अल्लाह में यकीन दे दे, इस वक्त इन पर इनके आमाल की बुराइयाँ खुल जाएंगी, और वो इसी चीज़ के फेर में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और इनसे कहा जाएगा, आज हम भी इसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूले थे। ओवन में खाना डालकर कोई भूल जाए तो क्या अंजाम होता? तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख़ है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुमने अल्लाह की आयात का मजाक बना लिया था, और तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था। बस आज ना ये लोग दोज़ख़ से निकाले जाएंगे, ना इनसे कहा जाएगा कि मुआफ़ी मांग कर अपने रब को राज़ी कर लो। तो फिर बात क्या है कि फ़लिल्लाहिल हम्द, پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین و آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. تلاوت سنیں ان آخری آیات کی اور غور کریں کتنا خوبصورت پیغام ہے سورت کے آخر میں.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
آپ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت کلام ہے نا, اللہ کی تعریف اور حمد کا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا گول پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.